सिर्फ वो मुसलमान चाहिए जो सिर्फ फर्ज 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 क्या है बस ये बता दें और बाकी से हमारी जान छुड़ा दें, वो सिर्फ इस फिक्र में ना हो बल्कि वो एहसान के लेवल पर आगे बढ़ने की हर वक्त दौड़ में लगे रहें। कहां से आएंगे वो मुसलमान? कोई प्लानिट है? कहां से आएंगे? मलेशिया से, इंडोनेशिया से, सऊदी अरब से, इजिप्ट से, सीरिया से, ईरान से, कहां से आएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह हर कुरान की क्लास से ऐसे ही मुसलमान निकाले इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात की है। अपने कंधों पर जिम्मेदारी को महसूस कीजिए और आप में से हर एक के अंदर अल्लाह ने ऐसा पोटेंशियल रखा है कि आप अपने अपने खानदानों में, अपनी अपनी औलादों को, अपनी अपनी सराउंडिंग में इस इस्लाम की खूबसूरती को बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्टर डाउन कर सकते हैं। आज हम मुसलमानों को सिर्फ थोड़ा सा इस दीन पर एतमाद चाहिए रब की मोहब्बत के साथ। रब की मोहब्बत तो हमें इस कलाम से मिलना शुरू हो गई। द डे वी हैव डिसाइडेड कि हम सूरह रहमान पढ़ेंगे, अल्लाह की मोहब्बत आपके ऊपर बरसना शुरू हो गई। रमजान के दरवाजे खुलते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत तो वैसे ही बरसना शुरू हो जाती है। अब सिर्फ आपकी और मेरी विल पावर है जिससे हम अपने ईमान को और अपने यकीन को और अपने बिलीफ को बढ़ाएंगे और हम इस दीन के ऊपर कभी अपोलोजेटिक जिंदगी भर नहीं होंगे। इस सूरह रहमान का एक इम्पैक्ट, एवर लास्टिंग इम्पैक्ट होना चाहिए और वो ये कि मैं जिंदगी में आज के बाद कभी भी एम्बेरसिंग मुस्लिम ना बनूं। मेरे साथ मेरे रब की मोहब्बत है वो जिसके कंट्रोल में सिर्फ एक खजाना नहीं हर खजाना है, वो जो एक कलमाए कुन से मेरी जिंदगी की तमाम मुश्किलात खत्म कर सकता है, वो जो एक कलमाए कुन से मेरे दिल को सुकून और मेरे दिमाग को रिलैक्स कर सकता है। क्यों ना थामे उसको हम, क्यों ना बैठें उसके सामने, क्यों ना उससे कलाम करें, क्यों ना उसके साथ वक्त लगाएं, क्यों ना उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो कॉन्स्टेंटली मुझे और आपको ये कायनात की हकीकतें ये बात बता रही हैं। एक साइंटिफिक थ्योरी आसमान के बारे में साइंटिस्ट ये देते हैं कि अगर हम ये अज्यूम करें कि इस आसमान के बाद एक और कायनात है, तो एक कॉन्सेप्ट वो देते हैं मल्टीवर्स का। मल्टीवर्स लिख लें, अब सब आपका ये सब होमवर्क है रमजान के बाद का। रमजान ने मत कीजिएगा, रमजान के बाद कीजिएगा आराम से, फिर आपको मजा आएगा। कुरान ऐसे पढ़ा जाए कि कुरान आपकी हॉबी, कुरान आपका इंटरेस्ट, कुरान आपका उठना बैठना और कुरान आपकी चॉइसेस में शामिल हो जाए और कुरान आपकी गुफ्तगू में आने लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहता यही है, रहमान चाहता यही है कि कुरान के साथ मेरी और आपकी जिंदगी गुजरे। तो ये जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि अगर हम ये मान लें कि इसके बाद भी कोई और कॉस्मिक बैलेंस मौजूद है आसमान के बाद, तो साइंटिस्ट कहते हैं इसका मतलब है कि कॉन्स्टेंटली बिग बैंग्स होते रहते हैं कायनात में, उस कॉस्मिक बैलेंस के बाहर जो हमारा है, इसके बाहर कॉन्स्टेंटली बिग बैंग्स होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली काउंटलेस न्यू यूनिवर्स क्रिएट होती रहती हैं। वल्लाहु आलम, आप जितना इन चीजों को पढ़ते हैं, क्या पता इन्हीं कॉस्मिक बैलेंस में, इन्हीं न्यू बिग बैंग्स में, इन्हीं न्यू यूनिवर्स में एक प्लैनेट जन्नत का हो। क्या पता आपका पूरा प्लैनेट एक जन्नत आपकी। आखिरी आखिरी इंसान जो जन्नत में दाखिल होगा उसकी जन्नत का साइज जो अहादीस में आता है, इस दुनिया जैसी 10 दुनिया है। तो क्या पता हर इंसान का अपना प्लानट जन्नत का, जब भी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। मेरी मर्जी, आप मेरी मर्जी कर रही है ना, तो जन्नत इज द परफेक्ट प्लेस टू डू मेरी मर्जी। दुनिया इज नॉट द परफेक्ट प्लेस टू डू मेरी मर्जी। आप जिस जिस वक्त मेरी मेरी मर्जी करेंगे, उस वक्त आपको ऐसी ठोकर लगेगी कि आप कहेंगे अल्लाह कोई मुझे अपनी मर्जी करने ही नहीं देता। अगर आपको अपनी मर्जी करनी है तो उस प्लेनेट की फिक्र करें जिसका नाम जन्नत होगा। और अल्लाह के पास खजानों की कमी नहीं है, अल्लाह चाहे तो हम में से हर एक को अपना अपना जन्नत का प्लेनेट दे दे। जब तो महल पे महल खड़े होंगे और जब तो आप बोर नहीं होंगे। सोचे ना, इतना सा जगह जन्नत की होगी तो 4 दिन बाद तो बोर हो गए। ये वो मुकाम है जिसमें मुझे और आपको कोशिश करनी है। आपको अगर एक रेस में भागना ही है, कंपटीशन करना ही है, मेहनत करनी ही है, कुर्बानी देनी ही है, ये है मैदान, देना। दुनिया में तो कितनी भी मेहनत कर ले, بہت اچھی پڑھائیاں بھی کر لیں, بہت اسٹیبلش بھی ہو گئے, بہت بزنس سیٹلڈ بھی ہو گئے, بہت بڑی بڑی کمپنیز بھی اپنی بنا لیں, بڑی 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 ملز اور فیکٹریز بھی لگا لیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے موت تو آنی ہے, سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے. یہ سب ہو اور ساتھ ساتھ جنت کی تیاری ہو, الحمدللہ, اور یہ سب ہو اور جنت سے غفلت ہو, تو یہ سب کا سب آپ کے اور میرے لیے وبال ہے. اللہ ہمیں اس مٹیریلزم کے شرک سے بچا کر رکھے. اللہ کبھی ہمیں دنیا کی نعمتوں میں ایسا نہ انڈلج کر دے کہ ہم اپنی آخرت سے, اپنے رب سے اور اپنے حساب کتاب سے غافل ہو کر رہ جائیں. تو کاؤنٹلیس کریشنز جو ہیں وہ آپ کو, کاؤنٹلیس تھیوریز جو ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں, آسمان کے بارے میں ملتی ہیں. ایک سائنٹسٹ ہیں جن کا نام آتا ہے فرانک گریگوریا, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کی اور وہ لکھتے ہیں, وی مے نیور لرن دا آنسر آن دس میٹر. اٹس اے فیکٹ. آئنسٹائن کو پڑھ لیجیے, آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی. اسٹیون ہاکنگز کو پڑھیے, ہاں ذرا ایمان مضبوط کر کے پڑھیے گا, بڑے بڑوں کے ایمان ہل جاتے ہیں اسٹیون ہاکنگز کی کتابیں پڑھ کے. ایتھیسٹ تھا نا, آپ خود آپ دیکھیں, نان مسلم سائنٹسٹ لکھ رہا ہے وی مے نیور لرن دا آنسر آن دس میٹر, مگر آگے کیا لکھتا ہے, بٹ وی ول کیپ لوکنگ فار دا آنسرز. اٹس اوکے, الحمد للہ, اللہ نے خود کہا ہے جاؤ تفکر کرو, افلا تتفکرون, جاؤ عقل کا استعمال کرو, اللہ نے تم کو انٹلیکٹ دیا اس کو استعمال کرو, عقل استعمال کرنے کو, ڈیولپمنٹ کرنے کو, سائنس میں انوینشنز کرنے کو, سائنس میں دنیا کے فائدے کے لیے آگے بڑھنے کو اسلام منع نہیں کرتا. ہاں, شریعت کے دائرے نہیں ٹوٹنے چاہیے, انسان کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلیکشن کیا ہے اس جگہ پر, اس انداز کا, اس آیت میں, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا, اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس آسمان کی جو اللہ نے یہاں پر ایک طاقت کو بیان کیا ہے, وہ طاقت آپ کو اس انداز میں نظر آ رہی ہے, اور سائنٹیفکلی اس چیز کو سمجھنے کے بعد آپ کو مزید اس کو سمجھ آتا ہے. آگے فرمایا, وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, ہی سیٹ دا اسکیل, آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھا. دیکھیں آسمان کو سیٹ کیا, اگر میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ آسمان نیلا کیوں ہے, بعض پہلے تھیوریز آئی تھیں بہت پہلے, تو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ دنیا 70% واٹر ہے اور پانی نیلا ہوتا ہے, تو پانی کا شیڈ جو ہے وہ آسمان پر آتا ہے. سو ہاؤ اباؤٹ صحرا, وہاں پہ تو آسمان پھر اورنج, یلو, براؤن نظر آنا چاہیے. اٹس ناٹ لائک دس. آسمان نیلا کیوں ہے, آپ کہیں گے گھر جا کے ہم سب سائنٹسٹ بن گئے. آسمان نیلا کیوں ہے, آسمان میں دو فیکٹرز ہیں اس کے نیلے نظر آنے کے. ایک فیکٹر ہے اس کے مختلف گیسز کا جو کمبینیشن ہے, اور دوسرا فیکٹر ہے سورج کی روشنی جو مختلف اسپیکٹرم سے آتی ہے اور پھر وہ مختلف میڈیمز میں سے گزرتی ہے. دو فیکٹرز مل کر آسمان کو بلو کلر کا دکھاتے ہیں. اب میں آپ کو پرزم اسٹڈی نہیں کرا سکتی ہوں کہ وائٹ لائٹ کے اندر جو 7 فریگمنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں سے کون سا اسٹرانگ ہوتا ہے اور کون سا ہلکا ہوتا ہے, بٹ صرف اتنا یاد رکھیں آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے, دو فیکٹرز کی وجہ سے. ون, ڈیو ٹو دا کمبینیشن آف ڈفرینٹ گیسز. دوسرا, جو لائٹ اسپیکٹرم ہے, جو سورج کی سفید روشنی آتی ہے وائٹ لائٹ, اس میں رینبو کی طرح 7 لائٹس ہوتی ہیں, تو اس میں جو اسٹرانگیسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ایک ویو لینتھ کے ساتھ جب سرٹن کسی میڈیم پر ٹکراتی ہیں تو آپ کو یہ بلو لائٹ جو ہے یہ نظر آتی ہے. تو اللہ نے مینشن کر دیا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا, کتنی بڑی اس میں نشانی ہے, اور اللہ نے اسکیل کو سیٹ کیا, ترازو کو رکھا. یہاں جو آیت میں الفاظ ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اٹس ناٹ جسٹ فزیکل اسکیل, کیونکہ آپ کانٹیکسٹ پورا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اللہ کی قدرت کو دکھایا جا رہا ہے, اللہ کی مختلف کریشنز جو کہ انسان کے مقابلے میں میسیو کریشنز ہیں, ان کی میجسٹی کو شو کیا جا رہا ہے. تو یہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ کیا ہے, دیکھیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اس ٹیکنیکلی یو کین سے دس از اللہز سگنیچر. لیکن آپ میں سے جو خواتین برانڈیڈ کپڑے پہنتی ہیں, برانڈیڈ جوتے پہنتی ہیں, برانڈیڈ بیگز لیتے ہیں, آپ کو ان چیزوں کا, ان برانڈز کا اندازہ, کیونکہ آپ استعمال کریں تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا یہ کس طرح کا ہوگا, یہ کس کی کلیکشن ہوگی, یہ بیگ کہاں سے ہوگا, کس جگہ کا ہوگا, یہ سینڈلز کہاں کے ہوں گے, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. مردوں کو یوزلی کارز کا بہت شوق ہوتا ہے, तो वो जरा सी एक ग्लिम्स, कोई गाड़ी गुजरती फौरन कहते हैं ये वाली गुजरे। जो बच्चे होते हैं उनको भी फौरन कार्स के नाम भी आते हैं, जल्दी जल्दी बता देते हैं। बिल्कुल जैसे जो आर्किटेक्ट होते हैं वो बिल्डिंग का पूरा एक एक दफा में ही पूरा उसका ओवरव्यू देखकर बता देते हैं कि इसको किस पैटर्न पर, किस मैपिंग पर बनाया गया है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे फोन बाज बच्चे जो हैं वो फोन में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, दूर से देख के बता देंगे आपको पता है फला आंटी ने अपने बच्चे को ये वाला फोन दिलाया। अम्मा कहती बेटा आपको कैसे पता चला? मैंने देख लिया था डिनर में, उसके हाथ में वही वाला फोन था। दूर बैठ के दूर से देख लेते हैं। तो कभी कभी लोगो आपको बता देता है, कभी कभी किसी चीज का एक स्पेशल फॉर्मेट आपको बता देता है। चीजों में, फैशन इंडस्ट्री में, सिग्नेचर ब्रांड, सिग्नेचर स्टाइल इज अ वेरी कॉमन टर्म जो हमें फॉरन समझ आते हैं। आई थिंक अगर इससे बेहतर हम इस आयत को नहीं समझ सकते। बवादा अल मीजान, बवादा अल मीजान, ही सेट द बैलेंस, अल्लाह ने तराजू को सेटल किया। ये अल्लाह का सिग्नेचर स्टाइल है, अल्लाह ने जो बनाया है बैलेंस के साथ बनाया। दिस इज इस्लाम्स सिग्नेचर, दिस इज शरियाज सिग्नेचर। अल्लाह ने जो बनाया है बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस के साथ बनाया है, ये अल्लाह का सिग्नेचर स्टाइल है। बवादा अल मीजान, तमाम मखलूकात, तमाम इंसान, अल्लाह की दी हुई शरीयत, अल्लाह का दिया हुआ कुरान बिल्कुल ऐसे ही परफेक्टली बैलेंस्ड है जैसे आसमान बैलेंस्ड है। इस्लाम को अगर आपने एक लफ्ज में डिस्क्राइब करना हो, सिनोनिमस, इस्लाम का दूसरा लफ्ज जो इस्लाम को रिप्रेजेंट करे तो वो बैलेंस है, अदल है। अल्लाह ने हर मखलूक को अदल के साथ क्रिएट किया है। इवन अल्लाह ने इंसान बनाया बैलेंस्ड, व नफ्सि वमा सवाहा फ अल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा। अल्लाह ने हमें बैलेंस क्रिएचर बनाया है, हमारे अंदर अल्लाह ने अच्छाई बुराई की पहचान रखी है। अल्लाह ने हमें ये तरीका फितरत में सिखाया है कि हमने अपने जिस्म की जरूरत को और अपनी रूह की जरूरत को पूरा कैसे करना है। इंसान कम इल्मी की वजह से बैलेंस आउट करता है। अल्लाह ने वाजे कर दिया कि अल्लाह ने हर चीज को परफेक्ट बैलेंस के साथ बनाया है। तो वो आसमान जिसका कोई एज नहीं है, चाहे दुनिया उसको कितना भी समझ सके या ना समझ सके, अल्लाह की नजर में अल्लाह ने इसको एक प्रॉपर बैलेंस के साथ बनाया है। इसके सिस्टम्स, इसकी फोर्सेस, इसके जितने भी मैग्नेटिक पावर्स हैं, इसके जितने भी यूनिवर्सेस हैं, इसके जितनी भी गैलेक्सीज हैं, इसका जो भी कलर स्पेक्ट्रम है, इसका जो भी गैसेस का कॉम्बिनेशन है, अल्लाह ने परफेक्ट बनाया है। जब इतनी बड़ी आसमान की मखलूक अल्लाह ने परफेक्ट बना दी, जिसको दुनिया साइंस की तरक्की के बावजूद उसके एच तक नहीं पहुंच सके, तो एक इतने से जर्रे से इंसान को अल्लाह ने बैलेंस नहीं दिया होगा। जो शरीयत दी होगी, जो मेथोडोलॉजी दी होगी, जो कुरान हाथ में पकड़ाया होगा, बैलेंस जिंदगी गुजारने के लिए नहीं दिया होगा। ये है कंपैरिजन जो मुझे और आपको कराया जा रहा है। जब अल्लाह की हर मखलूक जो मैसिव है साइज में वो बैलेंस्ड है, तो अल्लाह ने इंसान को जिंदगी गुजारने का जो मैनुअल दिया है इस्लाम की शक्ल में, मैथडोलॉजी की शक्ल में, मनहज की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की शक्ल में, वो सब बेहतरीन बैलेंस है। अल्लाह हमें यह बेहतरीन बैलेंस अडॉप्ट करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे लिए इस रमजान हम पर ईमान के ऐसे दरवाजे खोले कि हम आइंदा कभी गुनाह की तरफ, गलती की तरफ और अल्लाह से दूर जाने की तरफ सोचें भी नहीं। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह हमारी जिंदगियों में इतनी बरकत दे कि हमने आपकी मदद से जो कुरान को पढ़ने का रास्ता या दरवाजा अपनी जिंदगी में खोला है, आइंदा कभी यह दरवाजा हमारी जिंदगी में बंद ना हो। अल्लाह हमें ऐसे हाल में मौत दे कि हम अपने अंजाम से राजी हों और आप हमसे राजी हों। اللہ اس رمضان ہم سب کو بہترین مغفرت کر کے شوال کے مہینے میں داخل فرمائیے گا. اللہ ہمارے ایک ایک روزے کو, ہمارے ایک ایک لمحے کو, ہماری ایک ایک نماز کو, ہمارے ایک ایک سیکنڈ عبادت میں کھڑے ہونے کو اور قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کو قبول فرما لیجئے. اللہ تمام مسلمانوں پر, پوری امت میں رحم فرمائیے. اللہ تعالیٰ جو جہاں مشکلات میں ہیں, اللہ ان سب کی مشکلات کو دور فرما دیجئے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کے دن ہر دن کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. پلیز اپنے مرحومین کے لیے خاص دعائیں کیجئے, اپنی مغفرت کی خاص دعائیں کیجئے, اور اپنی اولاد کی ہدایت کی اللہ سے خاص دعائیں مانگیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.